चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते साक्षात्देवताय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था कल की। नारद मुनि ने बताया था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान की क्रियाकलापों को ग्लोरीफाई करता है तो जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा, अन्यथा इन कष्टों से उबरने का कोई साधन नहीं। इसके बाद ये नेक्स्ट अध्याय छठवां अध्याय प्रारंभ होता है। तो आज बहुत विशेष दिन भी है हमारे बीच में। आज एक स्पेशल किड गिरधर प्रभु आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं अनिकेत को सामने रख के। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो देख सकते हैं। अनिकेत गिरधर प्रभु का पुत्र है। आज उसने पहली बार 16 माला की है। बहुत समय से माला कर रहा है परंतु बहुत आज पहली बार उसने 16 माला कंप्लीट की। तो आप सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए। बहुत सिंसियर बच्चा है। हम जब उनके घर पे गए थे तो उसके घर में उसने छोटे से विग्रह रखे हुए हैं। विग्रह को सेवा भी करता है, रात में सुलाता भी है। छोटे से एकदम छोटे से विग्रह है, रात में सुलाते हैं, उनके सामने कीर्तन करते हैं, खुद भी माला करते हैं। और प्रभु जी के घर में जगन्नाथ जी के विग्रह भी हैं। तो कितनी एज है प्रभु अनिकेत की? एज कितनी है? 9 साल 8 साल
9 ईयर्स प्रभु
9 ईयर्स 9 साल का बच्चा है। आज उसने पहली बार लाइफ में पहली बार 16 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो आप सभी उसको आशीर्वाद दीजिए, उससे प्रार्थना करिए कि भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़े। तो इस प्रकार अनिकेत के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनिकेत बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं हम लोगों को, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं?
नहीं प्रभु जी, थैंक यू।
इसी तरह से करते रहिए भगवान की सेवा, भगवान बहुत खुश होंगे आपसे।
ठीक है,
ओके, धन्यवाद। तो अध्याय 6 जो है वो स्टार्ट होता है नारद मुनि से। व्यासदेव प्रश्न करते हैं, नारद मुनि ने तो यहाँ पे एंड कर दिया था। इसके बाद व्यासदेव प्रश्न करते हैं, क्योंकि जब वेद व्यास अपने टीचर की स्टोरी सुनते हैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और उस एक्साइटमेंट में वेदव्यास नारद मुनि से पूछते हैं कि भक्ति वेदांत तर्ज के जाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ और आप कैसे इस स्तर पे आए, ये सब प्रश्न करते हैं। और फिर उन प्रश्नों का उत्तर देते में नारद मुनि फिर से जहां तक उन्होंने बताया था, मतलब 4 महीने उन भक्तों के साथ व्यतीत करने के बाद, उसके आगे की बात नारद मुनि वेद व्यास के प्रश्नों के उत्तर में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक भी और बहुत अच्छा अध्याय है, इम्पोर्टेंट अध्याय भी है, क्योंकि नारद मुनि ने किस प्रकार अपना आध्यात्मिक जीवन सफल बनाया उसके ऊपर ये अध्याय पूरा डिटेल में बताता है। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुत। व्यास सत्यवती सुत श्री सूत गोस्वामी ने बोला एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च। इस प्रकार से श्री भगवान के सात्यवेश अवतार, मतलब देवर्षि नारद के जन्म और कर्म के बारे में जब सुना तो व्यास मुनि जो कि भगवान जो कि सत्यवती के पुत्र हैं और भगवान के अवतार हैं, उन्होंने अपने गुरु से कुछ और प्रश्न किए। इस प्रकार से देवर्षि के जन्म कर्म की कथा सुनने के बाद व्यास देव ने उनसे और आगे कुछ प्रश्न किए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्रील व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। हमेशा आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन आंसर से ही होते हैं। आप देखेंगे कोई भी ग्रंथ प्रश्न उत्तर से ही प्रारंभ होता है। भगवद गीता में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण उत्तर देते हैं। श्रीमद भागवत में बहुत सारे कन्वर्सेशन है। मेन कन्वर्सेशन सुखदेव गोस्वामी, दो मेन कन्वर्सेशन है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, और सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों के बीच में। और इनके बीच में अलग अलग कथाएं हैं, नारद मुनि और युधिष्ठिर की कथा है, और विदुर और मैत्रेय की कथा है, ब्रह्मा और नारद की कथा है, भगवान विष्णु और नारद की, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कथा है। तो इस प्रकार से संसार में जब भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जो उत्तर मिलते हैं उनसे महान महान ग्रंथों की रचना होती है। मार्कंडेय ऋषि के कई पुराण हैं जिनमें उनके डिस्कशन आते हैं। इसी तरह से शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं तो तंत्र की रचना होती है। तो हमेशा संसार में प्रश्न उत्तर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली हर व्यक्ति प्रश्न उत्तर कर रहा है, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो। जो बिजनेस वाले हैं वो भी दिन भर इसी में लगे हैं, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, क्वेरी करना, क्वेरी का आंसर करना। कॉल सेंटर भी इसीलिए चलते हैं, क्वेरी उसके आंसर देना। तो संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पूछने या कुछ ना कुछ उत्तर देने में लगा है, परंतु वो सारी वस्तुएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आध्यात्मिक इंक्वायरी। जब कोई व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक इंक्वायरी करता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। श्री व्यासदेव नारद मुनि की सिद्धि के विषय में और भी जिज्ञासु थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे श्री भगवान के विरह के दिव्य भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब श्री भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। भगवान ने नारद मुनि को दर्शन दिया, उसका डिस्क्रिप्शन इस अध्याय में आता है। तो अभी ये प्रश्न प्रारंभ होते हैं, व्यासदेव क्या क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। व्यास उवाच, भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्वेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम् अकरोत् भवान्। आपने क्या किया, श्री व्यासदेव ने नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। ये बात जो है नारद मुनि के इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म का डिस्क्रिप्शन है जब वो दासी के पुत्र थे। तो व्यास देव पूछ रहे हैं कि 4 महीने वो महामुनि आपके साथ रहे, फिर जब वो चले गए उनके जाने के बाद आपने क्या किया। श्री व्यास देव स्वयं नारद मुनि के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि ने जो कुछ किया उससे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। श्री नारद मुनि की ही तरह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म प्रच्छा। सद्धर्म प्रच्छा, सद्धर्म मतलब वास्तविक धर्म, प्रच्छा मतलब पूछना। तो शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न करना या आध्यात्मिक इंक्वायरी करना। और चूंकि नारद मुनि इतनी ऊंची अवस्था में थे, नेचुरली व्यासदेव की भी इच्छा थी कि वो सिद्धि को प्राप्त कर सके नारद मुनि के समान, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से इस प्रकार से प्रश्न किए कि महामुनियों के जाने के बाद आपने क्या किया। और अगले 1-2 प्रश्न है इसमें, 4 नंबर श्लोक तक प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्वयंभुव कया भक्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदं उदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। और दीक्षा आपको मिली तो उसके बाद आपने क्या किया। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। ये तो ये इंक्वायरी उन्होंने की कि उन महामुनियों के आपके पास से जाने के बाद आपने क्या किया, उन्होंने आपको दीक्षा दी उसके बाद आपने अपना जीवन कैसे बिताया और इस शरीर को कैसे प्राप्त किया। क्योंकि उनको पता है कि नारदासी पुत्र जो थी अवस्था वो ज्यादा अच्छी अवस्था नहीं थी, और अभी नारद मुनि की जो अवस्था है एकदम दिव्य अवस्था है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक था कि उस अवस्था से इस अवस्था तक आप कैसे आए, इसके बीच में और कुछ कुछ क्या और क्या क्या हुआ आपके साथ। पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन और आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्रील व्यासदेव की इच्छा थी कि श्री नारद मुनि ये सभी तथ्य सबकी तुष्टि के लिए प्रकट करें। नारद मुनि व्यासदेव अच्छी चाहते थे, क्योंकि ये नारद मुनि की हिस्ट्री, नारद मुनि संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, संसार के जितने महान महान टीचर हैं वो सभी नारद मुनि के शिष्य हैं, चाहे उद्धव हो, चाहे प्रहलाद हो, वेद व्यास हो, वाल्मीकि हैं और प्राचीन बरही है, प्रचेतस हैं, ध्रुव, ये सभी नारद के शिष्य हैं। तो नारद मुनि की जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑब्वियसली संसार में बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो व्यासदेव की इच्छा थी कि ये स्टोरी कैसे सभी के सामने आए, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कल्प विषया मेताम स्मृति ते मुनि सत्तम नाह्येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनु, एक मनु के अंदर 71 चतुर्युग होते हैं, मतलब 1000 चतुर्युग निकल चुके थे और उसके बाद भी नारद मुनि को अभी भी वो घटना याद है। इसलिए व्यासदेव आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि काल शक्ति ऐसी है कि हर वस्तु का संहार हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है, ऐसा कैसे है कि ब्रह्मा का दिन निकलने के बाद भी आपको सब कुछ याद है। आज सुबह ही हम भगवद गीता में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमसे पूछा जाए कि कल इसी टाइम पे हम क्या कर रहे थे तो हमें याद नहीं रहता। जैसे अभी कितना बजा है, 7:58 होने वाला है, तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कल 7:58 पे क्या कर रहे थे, वैसे कल का आसान है बताना, क्योंकि कल आप में से कई लोग हो सकता क्लास में ही हो, तो यही क्लास चल रही थी कल इस टाइम पे। बट इन जनरल अगर मैं पूछूं आपसे कि कल आप दोपहर में 12 क्या कर रहे थे तो बताना मुश्किल होगा। तो काल जो है, काल शक्ति संसार में हर वस्तु का विनाश कर देती है, याद शक्ति का, शरीर का, सब चीजों का विनाश हो जाता है। तो नारद मुनि, ये व्यासदेव को आश्चर्य हुआ कि कैसे काल शक्ति आपको प्रभावित नहीं की, आपको अभी भी सब कुछ याद है। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद मुनि ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह भौतिक शरीर प्राप्त था तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट कि आध्यात्मिक चेतना विनाश नहीं होती है, भौतिक चेतना हम चीजें भूल जाते हैं क्योंकि भौतिक शरीर बदल जाता है तो चेतना भूल जाती है। इसके बाद पूरा अध्याय नारद मुनि स्टोरी अपना बाद में जो कुछ हुआ वो सब डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो पूरा अध्याय इसी के ऊपर आधारित है। श्री नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्वेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारसम। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। नारद मुनि ने बताया कि 4 बिताने के बाद वो लोग चले गए और फिर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पूर्व जन्म में जब श्री नारद मुनि को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। क्या क्या परिवर्तन आया था, कल हमने डिस्कस किया था, 3 में परिवर्तन आया था। सबसे पहले उनको दिव्य ज्ञान मिला, उसके बाद भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव हुआ, उसके बाद भगवान के प्रेम का अनुभव हुआ। एक श्लोक था 35-36 या कुछ 39 श्लोक में 3 में उनको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके बाद नारद मुनि आगे बताना प्रारंभ करते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी। बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं होती हैं उनके जीवन में। एकात्मजा मे जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मने अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन ना था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। तो नारद मुनि अकेले पुत्र थे और उनकी माँ बहुत भोली भाली थी, वो बच्चे के प्रति बहुत स्नेह था। नेचुरली अकेला बच्चा जो होता है उसके प्रति बहुत स्नेह होता है। अकेला नहीं भी हो तब भी माँ को हर बच्चे के प्रति स्नेह होता है। ऐसा नहीं कि दो तीन होते हैं तो उनके प्रति स्नेह नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव है, माँ का स्वभाव है बच्चे के प्रति स्नेह होना। कई बार जब कोई बच्चा इस्कॉन के प्रोग्राम में आता है तो माँ सबसे ज्यादा अलार्म हो जाती है, क्योंकि माँ घबरा जाती है, पता नहीं बच्चा इस्कॉन मंदिर जाएगा क्या होगा। एक बार मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मतलब एक भक्त थे जो भक्त बने थे पर पहले वो भक्त नहीं थे, तो मुझे बता रहे थे कि पहले वो इस्कॉन के बारे में क्या सोचते थे। बोले थे पहले मैंने अपने बच्चे को बोल के रखा था कि बेटा इस्कॉन में जाना अगर तो एंट्री गेट से घुसना ना, तो यहाँ वहां कहीं नहीं देखना, कोई भक्त अगर कहीं से कोई बुला ले तो उसकी तरफ देखना भी नहीं, वो बात तो कभी मत करना, जाके भगवान का दर्शन करो एंट्री गेट से और तुरंत एग्जिट गेट से निकल के बाहर आ जाओ। इस्कॉन मंदिर बहुत डेंजरस है, वहां अगर तुमने किसी की बात सुन ली तो फंस जाओगे, इस तरह से वो बता रहे थे। कई लोगों का ऐसा फीलिंग होता है, बहुत लोग इस प्रकार से बताते हैं। और एक पिताजी तो इस तरह से थे कि बोलते थे इस्कॉन मंदिर मत जाओ, भले तुम्हें नशा करना है तो नशे की दुकान में चले जाओ, पर इस्कॉन मंदिर जाओगे तो फंस जाओगे। तो सामान्यतः लोगों की फीलिंग होती है कि बच्चा अगर अध्यात्म करेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाएगा तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, भले ही वो नशा करे बुरी आदतों में जाए तो कोई बात नहीं, परंतु उसको भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। कई लोगों का इस प्रकार से मेंटेलिटी, मॉडर्न लोगों का इस प्रकार से मेंटेलिटी होता है। गौरांग एक बताते हैं, वो मुंबई में एक बस में यात्रा कर रहे थे, सिटी बस में, तो उनके थोड़े से आगे सीट पे एक माँ अपने बेटे के साथ बैठी थी। तो माँ ने गौरांगपुर की तरफ इशारा करके बेटे से बोला, बेटा देखो ये भूत है। इस प्रकार से बेटे को डरा रही थी गौरांगपुर की तरफ दिखा के। तो सामान्यतः लोग साधु को इस प्रकार से सोचते हैं कि ये साधु लोग जो है भूत के समान है। सामान्यतः मतलब मॉडर्न लोग जो कि एकदम मॉडर्न संस्कृति में है, तो वो सोचते हैं कि जो भक्त है या साधु है वो समाज के ऊपर बोझ के समान है। तो ये मॉडर्न लोग हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है नारद मुनि की माँ का, नारद मुनि की माँ तो स्वयं भी आध्यात्मिक थी क्योंकि वो भक्तों की सेवा की थी, परंतु मैं ये जस्ट बता रहा हूँ कि माँ का एक नेचर होता है बच्चे से आसक्त होना, और उसमें वो एक नेचुरल भी है, प्राकृतिक है, क्योंकि जिसने 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखा है वो नेचुरली उसके उसके शरीर से आसक्त होगी। अगर वो माँ भक्त बन जाती है, बच्चे को भी भक्त बनाती है, तो फिर वो स्नेह जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। परंतु अगर वो माँ भी भौतिकता में रहती है, बच्चा भी भौतिकता में रहता है, तो वो स्नेह फिर उस व्यक्ति को, उस आत्मा को बांध देता है। तो हम किसी से स्नेह रख सकते हैं, किसी से अटैचमेंट रख सकते हैं, परंतु उसको हमें आध्यात्मिक बनाना होगा, शरीर के स्तर पर नहीं बनाना होगा। सबसे पहला चीज तो है कि माता पिता को ये सोचना चाहिए कि माता पिता का पहला धर्म है कि बच्चे को भगवत धाम की प्राप्ति हो। श्रीमद भागवत तो इस प्रकार से बताता है कि व्यक्ति को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने बच्चे को भगवत धाम भेजने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो स्नेह में कोई समस्या नहीं, परंतु वो स्नेह भौतिक स्तर पे ही नहीं रहना चाहिए, केवल आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं, मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह ना केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन ना था, अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। स्वतंत्र न कल्पासी उद्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुमय यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पर आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ट की गुड़िया के समान है। नेचुरली वो नारद मुनि से बहुत प्रेम करती थी, तो उनको अच्छे से सिखाना चाहती थी, उनको सारी अच्छे से सुविधाएं देना चाहती थी, परंतु उसके पास खुद भी धन नहीं था और दूसरे लोगों पर आश्रित थी। इसलिए उसकी इच्छा होने के बाद भी वो इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। और यह संसार एक्चुअली देखने में लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, वास्तविकता में इस संसार में हम पूरी तरह से परतंत्र हैं। तीन गुण जो है वो हमें नचाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो जिस गुण में रहता है उस गुण के द्वारा वो नाचता रहता है। तो ये सोचना एक मूर्खता जैसा है कि हम संसार में स्वतंत्र है। हर व्यक्ति कठपुतले के समान है, काष्ट की गुड़िया के समान है, जिसको भगवान नचाते रहते हैं। अहम च तद्ब्रह्मकुले ऊषीवांस्तदुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पञ्चायनः। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव ना था। इस प्रकार से 5 साल के बच्चे थे, उनको कोई अनुभव नहीं था, पूरी तरह से माता पे डिपेंडेंट थे। 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ के अलावा वो कुछ जानता नहीं है। माँ जहाँ जहाँ जाते हैं उसके साथ रहते हैं। अभी देखते हैं भगवान ने किस प्रकार से नारद मुनि के जीवन में कार्य किया। अगले श्लोक में आता है, एकदा निर्गता गेहात उहंती निशिंगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पष्ट प्रणाम कालचोदितः। एक बार क्या हुआ, उनकी माँ गाय दोहने के लिए जाती हैं। एक बार जब मेरी माँ बिचारी रात्रि के समय गाय दोहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। अभी बेचारे अभी अभी भक्ति कर रहे हैं, नारद मुनि भक्ति में एडवांस हो गए हैं, माँ केवल उनके साथ है। ऐसे समय पे भगवान ने माँ को छीन लिया। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि भगवान ने नारद मुनि के साथ अन्याय किया, परंतु ये भगवान का एक बड़ा प्लान था। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता में ठीक से नहीं कर पा रहा है, भगवान देखते हैं कि उसकी सिचुएशन उतनी ज्यादा कंडीसिव नहीं है भक्ति के लिए, तो भगवान उसकी सिचुएशन बदल देते हैं कई बार। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, उनकी माँ चूंकि ऐसी अवस्था में थी कि भगवान की भक्ति ज्यादा नहीं कर सकती थी, उनके पास कोई साधन भी नहीं था, दूसरे के ऊपर आश्रित थी, तो उन भगवान ने उनका शरीर चेंज कर दिया, उनको दूसरा जन्म दे दिया जहाँ पे वो भक्ति कर सके। और नारद मुनि को माँ की अटैचमेंट से, क्योंकि नारद मुनि हो सकता संन्यास नहीं ले पाते, अगर उनकी माँ साथ में रहते तो नारद मुनि को छोड़ते नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नेह करती थी, तो हो सकता वो नारद मुनि संन्यास नहीं ले पाते। तो माँ की मृत्यु से माँ को अगला जन्म दे के उनको भगवत भक्ति का प्रयास करने का मौका दिया, और नारद मुनि को उन्होंने संसार से डिटैच होने के लिए, संसार से संन्यास स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ दिया। तो इस तरह से भगवान का प्लान है। कई बार भगवान के प्लान हमें समझ में नहीं आते हैं, पर भगवान शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा प्लान करते हैं, हमारे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे साथ अगर ऐसा कुछ कर दिया तो हम भक्ति छोड़ देंगे। तो नारद मुनि बहुत एडवांस हैं, भक्ति में इतने आगे निकल चुके हैं, इसलिए उसके साथ इस प्रकार से भगवान ने अरेंजमेंट किया। इस प्रकार की लीलाएं सुन के भक्त डर जाते हैं कई बार कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम उस लायक भी नहीं है। हमारी भक्ति केवल इसी पर टिकी है कि हमारा सब कुछ ठीक से चलता रहे। हमारा ठीक से नहीं चलता तो हम भक्ति का ही आरोप लगाते हैं, और भक्ति का आरोप लगा के भक्ति करना बंद कर देते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा भगवान बोलते हैं, यस्य अहम् अनुगृह्णामि, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उसके साथ इस प्रकार कभी कभी होता है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता भी है, भगवान परिस्थितियां देखते हैं, अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके जीवन को बदल देते हैं। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। उनकी माता को भगवान ने उठा लिया, जिससे कि वो बालक नारद मुनि पूरी तरह से भगवान की कृपा पे आश्रित हो सके। और नारद मुनि भी इतने बड़े भक्त थे कि माँ की मृत्यु की खबर मिली, उन्होंने उसको भगवान का अरेंजमेंट समझा। तदा तदा हम ईशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। देख सकते हैं 5 साल की अवस्था में नारद मुनि कितने उच्च अवस्था में थे भक्ति की। इस प्रकार की घटना हुई, उसके बाद भी उन्होंने उसको भगवान की कृपा माना। सामान्यतः लोग इसको भगवान का अन्याय मानते हैं, परंतु नारद मुनि ने समझा कि भगवान भगवान सभी के पालक हैं, भगवान सबका भला चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे साथ हुआ है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ भगवान ने मेरा भला चाहा है। इस प्रकार सोचते हुए 5 साल के बच्चे होने के बावजूद वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। क्यों उत्तर दिशा की ओर गए? क्योंकि सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि उत्तर दिशा में साधु पुरुष रहते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय है। तो पहले के समय में जब भी कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए जाता था तो वो उत्तर में चला जाता था, हिमालय की ओर चला जाता था। नारद मुनि भी छोटे बालक थे, उन्होंने सुना था हिमालय में जाना चाहिए, उत्तर दिशा में जाना चाहिए, तो उत्तर दिशा की तरफ निकल गए। अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि में विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वास्तविकता में इस संसार में ज्यादा समृद्धि मिलना एक फीवर के समान है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा समृद्धि ज्यादा पैसा होता है, फिर वो भगवान को समर्पण ही नहीं करता, फिर भगवान को चैलेंज करना चालू करता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस संसार के जो समृद्धि है वो एक फीवर के जैसी है, ज्वर की जैसी है। जब जैसे जैसे इस ज्वर का तापमान नीचे गिरता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होता जाता है। तो नारद मुनि अभी आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में वो क्या क्या उनको देखने मिलता है वो अगले श्लोक में आएगा। स्फीतांजल पदांस्तत्र पुरग्राम व्यजाकरान खेट खर्वत वाटीश्च वनान्य उपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। नारद मुनि बता रहे वो जब चल रहे थे तो रास्ते में क्या क्या आता है, और बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा हुआ है। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी। ये डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना चाहिए, इसका नहीं है, ब्रह्मा के पिछले दिन का है, कम से कम 1000 चतुर्युग पुराना है। परंतु उस समय भी इसी तरह से सिटी होती थी, उसी तरह से खेती होती थी, उसी तरह से उद्योग होते थे, गार्डन होते थे। तो अभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत एडवांस हो गए। ब्रह्मा का जब सृष्टि होता है तो हमेशा इस प्रकार का समय समय चक्र चलता है कि मनुष्य होंगे, फिर मनुष्य इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो हमेशा सिविलाइजेशन हमेशा रहती है, चाहे ब्रह्मा का कोई भी दिन हो। ये कम से कम अरबों साल पुरानी बात है, परंतु तब भी सेम चीज नारद मुनि ने देखा। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में रखा गया है। एक्चुअली पुराण का मतलब होता है बहुत पुराना, और इतिहास मतलब इतिहास, इतिहास भी पुराना होता है, परंतु पुराण और इतिहास में यह अंतर है कि इतिहास में क्रोनोलॉजी होती है, कोई का जीवन बताते हैं तो पूरा सीक्वेंस में बताते हैं, जबकि पुराण में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन रहता है कि हर चीज को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पुराण सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक है, अगर वो बताना चालू करेंगे तो कागज ही खत्म हो जाएगा, इतना नहीं लिख पाएंगे, इतने सारे वंश आके गए, इतनी सारी घटनाएं आके गई। तो पुराण में क्रोनोलॉजी नहीं होता है, पुराण में क्या होता है कि जो संसार की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन घटनाओं को कलेक्ट किया जाता है, जबकि इतिहास में क्रोनोलॉजी समय के सीक्वेंस से कार्य होता है। जैसे महाभारत और रामायण जो है वो इतिहास कहलाता है, जबकि श्रीमद् भागवतम जो है वो पुराण कहलाता है। तो दोनों ही स्टोरी हैं, भगवान के कथाएं हैं, परंतु उसमें एक में सारी वस्तुएं हैं और दूसरे में सारी वस्तुएं नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं। आगे भी नारद मुनि बताते हैं क्या क्या उन्होंने देखा। चित्र धातु विचित्राद्वीन निभग्न भुजद्वमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र स्वन पत्ररथ विभ्रम अद्भ्रमरश्रिय। मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आकारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे और मदांत भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। यहाँ एक चीज समझने लायक है कि यद्यपि नारद मुनि बहुत छोटे बालक हैं, परंतु उनका कोई आकर्षण नहीं है। वो बहुत सारी सिटी से निकले, गाँव से निकले, अलग अलग जलाशय से, अलग अलग जंगल से, वाटिकाओं से, परंतु कुछ आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो चुका था, तो उनको इन संसार की चीजों से कोई आकर्षण नहीं था। वो इसको देखते हुए जा रहे थे परंतु आकर्षित नहीं थे। नल वेणु सरस तन्वु तन्वक कुशकीचक गह्वरम् एक एवाति यातोऽहम् अत्राक्षं विपन्नं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलोक शिवाजिवम्। इसके बाद कुछ कुछ ऐसी जगहें आई जो बहुत ज्यादा अंधकार से भरी हुई थी। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरकंडों, कुशों, खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। इतने खतरनाक जगह से निकले, जंगल के बीच से जहाँ पे सांप, सभी प्रकार के जंगली जानवर थे, वहां से नारद मुनि पार करते हुए जाते हैं। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है इसमें। किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए श्री भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। भय रहित होकर इन सभी खतरों का सामना करना सन्यासी का कर्तव्य है, और वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान श्री चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी प्रकार मध्य भारत के जंगलों में यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भक्त बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने का व्रत ले और केवल श्री भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी का नाम स्वीकार नहीं किया था और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को बदलना नहीं चाहिए। इस युग में श्री भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की विशिष्ट संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे श्री नारद मुनि या श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण ना करके किसी तीर्थ स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के छठ गोस्वामी जैसे महान आचार्यों द्वारा संस्कृत संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है प्रभुपद ने। इसमें लिखा है एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वो पूरे संसार की विविधता को देखे। सन्यासी का एक लक्षण भी होता है अभय, उसको फियरलेस होना चाहिए। सन्यासी को ये डर नहीं होना चाहिए कौन मेरा मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि सन्यास आश्रम का ये लक्षण है कि व्यक्ति को इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से सन्यासी अलग अलग जगह विचरण करते हैं, भगवान की सृष्टि को देखते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धावान बनते हैं और लोगों को भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। ये सन्यास धर्म है और विशेष रूप से वो हमारे सभी सन्यासियों के लीडर हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने सन्यास आश्रम स्वीकार करके जंगल से होते हुए दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, पूरे भारत में भ्रमण किया और जंगल में पशुओं को भी भक्त बनाया। जो जिस गांव में जाते थे वहां के सभी लोग भक्त बन जाते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते करते सन्यासी को प्रचार करना चाहिए। अगर कोई कृष्ण भक्ति में नहीं है तो उसको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। सन्यास का केवल एक ही कार्य होना चाहिए, कृष्ण भक्ति का संसार में प्रचार करना। तो जो व्यक्ति सन्यास आश्रम स्वीकार करता है उसको पहले सीखना चाहिए शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना, शास्त्रों को अप्लाई करना और लोगों को शास्त्रों का प्रचार करना अलग अलग जगह घूम के। ये सन्यास धर्म का लक्षण है। इस प्रकार से 5 साल की उम्र में ये बालक सन्यासी के जैसे थे नारद मुनि, पूरे संसार में घूम रहे हैं, अलग अलग चीजों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है कि नारद मुनि चलते चलते थक जाते हैं, भूख लगती है, प्यास भी लगती है, तो एक जंगल में जाके रुक जाते हैं। परिश्रांति द्वियात्मानम् आत्माहम् त्वत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। नारद मुनि थक भी गए थे, प्यास भी लगी थी, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो सन्यासी के लिए आवश्यक भी है कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं ज्यादातर प्रकृति पे डिपेंडेंट रह के करें। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसे शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु जाते हैं। जब सन्यासी किसी के घर पर जाते हैं, कोई साधु किसी के घर पर जाते हैं, तो वो केवल भोजन करने के लिए नहीं जाते हैं, भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं, वो वास्तविकता में जाते हैं उस गृहस्थ को आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए। इसलिए साधु का ये कर्तव्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान हमेशा करें। जब भी कभी जाते हैं, जब भी किसी के घर पर प्रसाद जाते हैं, प्रसाद के लिए जाते हैं, तो भगवान का वाणी का कीर्तन करना चाहिए, नाम का कीर्तन करना है और भगवान के गुणों की गुणगान करना है, क्योंकि वो साधु का कर्तव्य है। तो और साधु को इस प्रकार से डिटेच भी रहना चाहिए कि अगर उसको नहीं मिलता है कोई भौतिक वस्तु तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए, प्रकृति के द्वारा जो चीजें हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो भगवान जब चाहेंगे तो भगवान अरेंज करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। इसके बाद 15 नंबर श्लोक में आता है तस्मिन् मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मात्मनात्मनात्मानमात्मस्थम यथा श्रुतमचिन्तयम्। जिस प्रकार से उन्होंने उन महामुनियों से सुना था उस प्रकार से नारद मुनि ने ध्यान करना प्रारंभ किया। उसके बाद उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। जैसे नारद मुनि ने उन लोगों से सीखा था उसी तरह से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नारद मुनि भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है यथा श्रुतम, जिस प्रकार से उन्होंने सुना था, अपने मन से करने नहीं बैठे कि मैं कोई मन में कुछ चीज सोचता हूँ भगवान का कोई रूप सोचता हूँ और अपने मन गणन तरीके से ध्यान करता हूँ, जैसा उन्होंने सीखा था उसी तरह से किया। तो इसी इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए, तब हम अपने आध्यात्मिक जीवन की सफलता में पहुंचते हैं। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार श्री भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था, इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। जब भी गुरु के पास जाते हैं तो ये तीन वस्तुएं होती हैं कि उनसे समर्पण करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी ने निष्ठापूर्वक सेवा की है और उनके प्रति आत्मसमर्पण डेवलप किया है, तब ये निश्चित है कि उसको भगवत ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति के विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि ने चूंकि अपने गुरुओं की सेवा बहुत अच्छे से की थी, इसलिए वो भक्ति में बहुत एडवांस थे और इसलिए वो भगवान का ध्यान करने के लिए वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैसे वो बैठे, भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और फिर भगवान ने उनको क्या क्या गाइडेंस दिया, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर नहीं, 20-22 श्लोक बाकी हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना दोनों अलग अलग होती है।
हाँ, आध्यात्मिक चेतना में हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, भौतिक चेतना में हम अपने आप को मालिक समझते हैं सब वस्तुओं का।
अच्छा,
आध्यात्मिक चेतना मतलब भगवत सेवा करने की चेतना, भौतिक चेतना मतलब भोग करने की चेतना।
हाँ, ठीक है, पता चला। हाँ, सेवा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो आज क्लास के फर्स्ट स्पर्श में बोला है कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए क्वेश्चंस क्वेश्चनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम जो क्लासेस अटेंड करते हैं उसमें अगर हमको कुछ क्वेश्चंस आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है?
नहीं नहीं, मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछा था, गुरु महाराज से ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन नहीं आते थे। तो उसमें गुरु महाराज ने उत्तर दिया था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हमें प्रश्न आएगा, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो हम उस प्रश्न को सुनने में इंटरेस्टेड हैं, उसका उत्तर जानने में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है हमारे मन में प्रश्न नहीं आए, हमने उस चीज को स्वीकार किया है, परंतु हमें उत्सुक रहना चाहिए कि किस प्रकार से दूसरे भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, उनका उत्तर क्या है, वो जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, तो वो सफिशियंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमें प्रश्न नहीं आ रहे तो हमारा एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है हमारा समर्पण अच्छा है तो हम उसको समझ के स्वीकार कर लेते हैं, और आगे जब हम समझेंगे, आगे जब हम और पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। परंतु बोरिंग नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रश्न कर रहा है तो ये नहीं सोचें कि अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन सुनेगा। वो एटीट्यूड अगर है दैट मीन्स एडवांसमेंट नहीं हो रहा। तो या तो खुद क्वेश्चन करना या दूसरे के क्वेश्चन के आंसर सुनने में इंटरेस्टेड होना, दोनों चलता है।
ओके प्रभु,
हरे कृष्ण प्रभु।
या एक और,
हरे कृष्ण।
हाँ यस
प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन थे आज। पहला क्वेश्चन तो ये था कि जैसे नारद मुनि के केस में हम देखते हैं भगवान जी की कुछ स्पेशल कृपा रही उनसे, एक टॉपिक भी उसके ऊपर आया, एक भगवान कुछ पर कुछ ही ऊपर अपने स्पेशल कृपा रखते हैं। और जैसे हम प्रहलाद महाराज जी के केस में देखते हैं तो प्रहलाद महाराज जब आने वाले नहीं थे, उससे पहले ही भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था कि प्रहलाद महाराज पेट में रह के सब सुन पा रहे थे, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये तो मतलब भगवान अंतर करते, मतलब ऐसा भौतिक दृष्टि से देखा जाए ऐसा अंतर जैसा लगता है, भगवान किसी चीज पर स्पेशल कृपा ही रखते हैं जबकि दूसरों पर उस तरीके की कृपा नहीं रखते, तो कैसे समझेंगे हम इसको?
दोनों के केस में ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा तभी हुई जब नारद मुनि की कृपा हुई, भक्त की कृपा के बाद भगवान की कृपा होती है। इस केस में भी हम देखें, नहीं मतलब कोई ना कोई शुद्ध भक्त की नारद मुनि, जैसे नारद मुनि के केस में सबसे पहले भक्तों ने कृपा की, चार भक्त वेदांत वहां पे आए, उन्होंने उनको अपना भोजन दिया और उस भोजन को दिया, अपनी सेवा का मौका दिया। तो अल्टीमेटली जो शुद्ध भक्त हैं वो हमें भगवान की कृपा का दर्शन कराते हैं। ये नारद के केस में है। प्रहलाद के केस में नारद मुनि ने जाके उनको बचाया था, कयाधु को देवताओं से बचाया था और फिर अपने आश्रम में ले गए थे, और चूंकि नारद मुनि ने उसमें इंटरेस्ट लिया तो फिर भगवान ने इस प्रकार से प्रहलाद के ऊपर कृपा की। तो हमेशा भक्त का, शुद्ध भक्त की कृपा पहले होगी उसके बाद भगवान की कृपा होगी, इसलिए हमें इंटरेस्टेड होना चाहिए शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर शुद्ध भक्त प्रसन्न हो गए तो भगवान आसानी से कृपा कर सकते हैं। ठीक है,
यस सर, यस। दूसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, मैं याद करके पूछता हूँ।
हाँ, एक चैट बॉक्स में आया है, इन अदर देन कलियुगज टू अटेन डिवोशनल सर्विस वन हैज टू रीच टू संन्यास स्टेज and pass alone through dangerous forests which I really cannot imagine myself. So the result is same. If we just go to Vrindavan and study the entries scriptures left by Six Goswami, it is so easy process. I am spellbound how much comfortable Lord Chaitanya had made it compared to previous process. Good. Yeah, sahi hai. Chaitanya Mahaprabhu ne bahut aasan bana diya rasta. To us process ko hum palan karenge to bahut aasani se Bhagavad Dham ja sakte hain. यस, नेक्स्ट प्रश्न है, ये मोबाइल का नंबर, मोबाइल का मॉडल लिखा है, गैलेक्सी N30, अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हाय कृष्णा प्रभु जी, मैं भूमिका मेहता जी बोल रही हूँ। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है, एक्चुअली लिटिल बिट पर्सनल, बट आई नीड टू नो। एक तो ये है कि मैंने अधिक मार्क्स में ही ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया है, और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि आई थिंक आई शुड फॉलो द प्रॉपर यू नो द नंबर। तो मैंने शुरू किया है 10वां अंक और भाग फर्स्ट, तो वो सही है कि इज देयर एनी स्पेसिफिक?
कहाँ से प्रारंभ शुरू किया है?
मैंने पहला श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद भाग एक।
नहीं नहीं, श्रीमद् भागवतम का स्टैंडर्ड तरीका है पहले स्कंद से स्टार्ट करना, क्योंकि आपको फ्लो पता चलेगा जब आप पहले स्कंद से करेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि एक पहले स्कंद से चालू करके 9वें स्कंद तक पढ़िए, उसके बाद 10वां स्कंद पढ़िए। अगर आपको 10वां स्कंद पढ़ना है पहले, तो कृष्णा पुस्तक जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, आपने देखा होगा।
हाँ, वो भी है, मैं आई एम फॉलोइंग दैट आल्सो, मतलब वो भी मैंने ऑलमोस्ट 1/4 पढ़ी है अभी। तो मेरा, आई मीन आई वाज कंफ्यूज्ड जस्ट बिकॉज कि मुझे कृष्णा का जो बर्थ है ना, उसका जो पूर्व भूमिका है ना, वो शायद ये भाग वन में है। तो जस्ट बिकॉज कि मेरा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ था तो मैंने ये शुरू किया, बट देन आई थॉट कि लेट मी चेक कि उसका जो फ्लो होता है कि कहाँ से शुरू करूँ, तो वो कंफ्यूज था लिटिल बिट, तो आई थॉट लेट मी चेक विथ यू के
फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बेस्ट है कि पहले से चालू करें, पहले स्कंद से, पहले कैंटो से चालू करें। एक बार जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम बीच बीच में सेक्शन में से पढ़ सकते हैं, परंतु अगर भागवत हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले स्कंद से पढ़ना बहुत अच्छा है। उससे हमें सीक्वेंशियली पता चलता रहेगा किस प्रकार से भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई, और 9वें स्कंद के जब हम पहुंचेंगे तो हमें फिर आगे 10वां स्कंद पढ़ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
थैंक यू वेरी मच। और एक प्रश्न है प्रभु जी के, जो हमारी नवदा भक्ति में से एक जो हमारा लिसनिंग वाला पार्ट होता है, तो जस्ट आपको शायद पता है कि नहीं, नहीं पता है, मैं आई एम अ वर्किंग वुमन, तो मुझे मतलब मैं जो मेरा रेगुलर होता है सुबह का वो मैं करती हूँ, बट जो लिसनिंग वाला पोर्शन है वो मेरे, अभी तो फिलहाल ये पेंडेमिक की वजह से हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही है, तो मेरा ऐसा है कि मैं काम करते करते सुन सकती हूँ, मतलब मुझे लैपटॉप पर ही काम करना होता है, तो इज इट पार्ट ऑफ दैट भक्ति कि ये नहीं चलेगा ऐसा सुनती हूँ तो?
नहीं, सुन सकते हैं, काम करते करते सुन सकते हैं, केवल ये होगा कि उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा,
बट ये आई कैन फील के मुझे 90% आई कैन से के हाँ 90% तो मेरा कंसंट्रेशन मतलब मैं ग्रास्प करती हूँ व्हाट एवर लाइक मैं तो सारे हमारे लाइक प्रभुपाद जी के और हमारे भक्ति चारु स्वामी या गोपाल कृष्ण महाराज के जो वीडियो क्लिप्स होते हैं तो लेटेस्ट वाला होता है वो मैं फर्स्ट सुन लेती हूँ. देन आई एम ट्राइंग टू मेरा सुनने का ये है कि मैंने अभी अभी शुरू किया है अभय चरण वाला जो हमारे भक्ति चारू स्वामी ने बताया बनाया है वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है. लोग बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा तो मुझे लगा एक बार अभी आपसे ही कंफर्म कर
दूं. क्या है कि बेस्ट तो है कि उसको ही सुने और कोई काम नहीं करें, पर चूंकि अगर आपका ऑफिस का टाइम है इस तरह से कि अलग से समय नहीं निकल पा रहा है तो वो मैनेजेबल है, परंतु कोशिश करिए कि कुछ ऐसा समय हो जब आप कोई और काम नहीं करें केवल सुने, चाहे वो 15 मिनट हो आधा घंटे हो कुछ ऐसा समय निकाल सकते. इसमें केवल ये है कि कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता है, बाकी कुछ ना कुछ तो जाता है, केवल ये है कि कंसंट्रेशन उतना नहीं होता है.
करेक्ट करेक्ट. थैंक यू प्रभु जी. यस
हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्रभु जैसे अभी आपको पता है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और रहते हैं तो प्रभु जी हमें भक्तों की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है. तो पहले तो प्रभु जी हमें कुछ ऐसा मतलब आप बताइए, आप आदेश करिए जिससे हम शुद्ध भक्तों की सेवा कर सके यहाँ रहते हुए. किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं मतलब ये सब जॉब करते हुए और उस तरीके से
कुछ कुछ समय निकाल के कहीं जा सकते हैं जहाँ पे एडवांस भक्त रहते हैं और कुछ दिन वहाँ रह के उनकी सेवा कर सकते हैं, चाहे 2 दिन रहें 3 दिन रहें. जिस भी एडवांस भक्त से हमारा संबंध है, शुद्ध भक्त से हमारा संबंध है, उनके पास जाके सेवा कर सकते हैं. और धाम में जब जाते हैं तो धाम में बहुत सारे शुद्ध भक्त होते हैं, वहाँ पे आगे बढ़ के हमें सेवा मांगनी चाहिए कि कुछ सेवा अगर मिल जाए. ऐसा तो नहीं कि हर दिन मिल पाएगा, बट साल में कुछ ऐसा समय स्पेसिफिक प्लान करना चाहिए कि जब हम एडवांस डिवोटीज की सेवा कर पाएंगे. जैसे सेवा हम रेगुलरली भी चल रहे हैं, वाणी सेवा तो हम कर रहे हैं क्योंकि उनके निर्देशों के आधार पर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं. पर यहाँ पे जो सेवा की बात हो रही जो नारद मुनि को मिली वो पर्सनल सर्विस है. पर्सनल सर्विस करने से हमारे हृदय में बहुत जल्दी प्योरिफिकेशन होता है, अटैचमेंट भी डेवलप होता है उस व्यक्ति के लिए. तो साल में कुछ समय ऐसा रख सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु के पास जाएं और अपना अपना सारा जो भी स्टेटस है, जो भी हमें लगता है कि हम सीनियर हैं, जो भी है वो सब भूल के एक सेवक की तरह उनकी सेवा करें. कुछ समय ऐसा प्लान करना चाहिए, या तो धाम में जाके या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो हैं. कई बार अगर हमें मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो कुछ दिन उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं. जब वो आसपास कहीं जाते हैं तो ट्रैवलिंग में उनसे एसोसिएशन भी बहुत मिलता है, उनकी सेवा करने का मौका भी मिलता है. तो ऐसा प्लान करेंगे तो कभी कभी साल में मौका मिल सकता है.
जी प्रभु जी ठीक. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मेरा क्वेश्चन याद आया.
यस
दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि जब भी कोई सन्यासी किसी के भी घर पे आते हैं तो जैसे उनका आदर सत्कार किया जाता है एज ए वैष्णव कल्चर के हिसाब से हमें करना चाहिए. बट अगर हम ये भौतिक लोगों के दृष्टि से देखें तो भौतिक लोग जो है मतलब जो बाहर के लोग जो जानते नहीं बिल्कुल वो इसे इस तरीके से देते हैं कि मतलब हाँ ये ऐसा बनते हैं इसलिए कि इनको ये अगर इन्होंने ये सब चीजें लिया है तो इनको ये सब चीजें ग्रहण नहीं करना चाहिए, इनको तो उस तरीके की जीवन शैली अपनानी चाहिए. तो फिर अभी कभी ऐसे पर्सन अगर मिलते हैं और इस तरह के कॉन्टेक्ट करते हैं तो मतलब कैसे उनसे क्या डील करना चाहिए और उनको हम कैसे इसको समझा पाए. हम
भारत में इस प्रकार से सिस्टम है कि भारत में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि साधु बहुत सिंपल रहेगा. तो भारत में साधु इंडिविजुअली ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति को हमें समझाना चाहिए कि इंद्रियों के भोग करने के लिए तो आप सब चीजें यूज करने के लिए तैयार हैं, परंतु जो इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है केवल कृष्ण की सेवा में सब चीजों को यूज कर रहे हैं उससे आपको ऑब्जेक्शन है. ऐसा तो है नहीं कि वो साधु अपने लिए यूज कर रहे हैं, वो व्यक्ति अटैच नहीं है. आप देखिए कि उसी साधु को अगर आप सम्मान देंगे तो स्वीकार करेगा, नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं है. हमारे सन्यासी ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिनको अगर कोई भोजन नहीं है तो 2 दिन भोजन नहीं भी करते हैं, फिर कभी कोई फीस्ट भी दे देता है. तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उस चीज से आसक्त नहीं है, कृष्ण से आसक्त है. अगर कृष्ण कुछ भेजते हैं तो स्वीकार करते हैं और नहीं भेजते हैं तो फिर नहीं करते हैं. इस्कॉन के सन्यासी बहुत एडवांस है उसमें. आप देखेंगे अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं होती तब भी उनको कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो फैसिलिटी से अटैच नहीं है. अगर मिलेगी तो यूज करेंगे, नहीं मिलेगी तो यूज नहीं करेंगे. उस तरह से समझा सकते हैं. प्रभुपाद जी से अब ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आप मर्सिडीज गाड़ी में क्यों आते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली क्या है, गुरु के लिए तो इन लोगों को सोने सोने और हीरे जड़ी हुई कार को लेके आना चाहिए, परंतु मेरे शिष्य लोग गरीब हैं इसलिए लोहे की कार मर्सिडीज कार लेके आते हैं, नहीं तो आइडियली गुरु को तो सोने की कार में लेके जाना चाहिए, सोने के रथ में लेके जाना चाहिए। तो भगवान के भक्त तो भगवान के पुत्र के समान है, उनके भगवान का सारा धन उनके लिए ही है एक्चुअली। भगवान के जो भक्त हैं भगवान का पूरी धन पे उनका अधिकार है, तो उनके ऊपर उपयोग किया जाना चाहिए। और उस साधु को अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि उस चीज से वो अटैच नहीं हो, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे फ्राइडे शाम को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, गौर प्रेमानंदे।